सगोषो धात्राष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत नभस्य पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन् सगोषो धात्राष्ट्राणाम् हृदयानि विदारयत नभस्य पृथिवीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। व्यनुनादयन के माने गूंजने लगा, वो घोष सारी पृथ्वी के ऊपर फैल गया, गर्जना शंखों की छा गई, आकाश में भी छा गई, और उसका प्रभाव ये हुआ कि धातराष्ट्राण हृदयानि विदारयत। धृतराष्ट्र के पुत्र जितने गौरव लोग थे उनका हृदय विदीर्ण होने लगा। अब उनका कौरवों का हृदय विदीर्ण होने लगा, ये किस बात की सूचना है कि पराजय यहीं से शुरू हो गई। शंख बजते ही मानो शंखों का ही इतना संघर्ष हुआ एक दूसरे की तरफ से, और ध्वनियां इतनी हुई, कुछ संखद ध्वनि ने ही कौरवों को पराजित कर दिया। ये देखो इस प्रकार का जो है, ये है संजय की भाषा का, हृदयानि विदारयत, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। अब जिसका की संकट ध्वन सुन करके जो भयभीत हो गए हों, या जिनका के जीत धड़कने लगा हो, वो भला आगे युद्ध क्या करेंगे, युद्ध में क्या जीतेंगे, ये सूचना यहीं से संजय ने उनको दे दी। अब ऐसा है क्यों? मुख्य बात ये है, शास्त्र ये दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति को समझ में आवे न समझ में आवे, लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष है जीवन में सदा विजय उसी की होती है। जो धर्म का पक्ष है, अध्यात्म का पक्ष है, विजय उसी की होती है। जो भौतिक पक्ष है, अधर्म का पक्ष है, उसकी विजय नहीं होती, पराजय उसी की होती है। पराजय के माने दुखी होगा, परेशान होगा, चिंतित होगा, रोएगा धोएगा, यही उसकी पराजय है। युद्ध होती है, युद्ध में पराजय हो गई, वैसे जीवन संग्राम व्यक्ति का चलता है, उस जीवन संग्राम में भौतिकवादी लोग पराजित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, ये सब समस्याएं उनके मन में आती हैं, उनको शांति नहीं मिलती। लेकिन जो धर्म के पक्ष में है, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, उनकी विजय है। विजय इसी बात की है कि उनको विजय प्राप्त है अशांति पर, भय पर, चिंता पर, उनके ऊपर उन्हें विजय प्राप्त है। वो निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, सदा प्रसन्न हैं, उत्साहित हैं, जो कुछ जीवन में वो करते हैं उसे संतुष्ट रहते हैं, तृप्त रहते हैं, ये सब उनकी विजय का रूप है। वही इस बात को बराबर ध्यान में रखते हुए शास्त्र की रचना जो इसी प्रकार से है, जिसे सावधानी से पढ़ें तो यही भाव जागृत होगा, और व्यक्ति का ध्यान अध्यात्म की तरफ, परमार्थ की तरफ, धर्म की ओर, उधर की तरफ जाएगा। जो धर्म में जो कुछ है वही करें, जो सन्मार्ग का कार्य है, न्याय का है, उसी को पकड़ें, जो सदाचार का है उसी को पकड़ें। धर्म का सिद्धांत, परमार्थ का सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत यही कि व्यक्ति जो है वो हो अपने आप को शांति में रखे, प्रसन्न रखे, उत्साहित रखे, अपनी शक्तियों को जागृत रखे, और अपनी जागृत हुई अपनी शक्तियों से अन्य लोगों की सहायता करे, उनको सुख पहुंचा दे, किसी को दुख न दे। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देते हैं, अगर विश्लेषण करके आप देखो तो इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं दुखी है। जिसके पास जो कुछ होता है वही दूसरे को देता है। अगर किसी के पास धन होगा उसे मांगो तो जिसके पास धन होगा धन दे देगा, पैसा दे देगा, रुपया दे देगा, है ही नहीं तो दे क्या देगा। अगर किसी से कहें दूसरे लोगों को सुख दो, अब उसके पास सुख है ही नहीं तो दे क्या दे, स्वयं खोखला है, स्वयं दुखी है, स्वयं अशांत है। अब ऐसा दुखी व्यक्ति, अशांत व्यक्ति दूसरे को जब देगा तो उसको भी अशांत बनावेगा। कैसे अशांत बनावेगा, कैसे दुखी बनावेगा, अपनी समस्याओं की गाथा सुनाएगा, है? मुझे ये परेशानी, मुझे ये परेशानी, ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा बिगड़ गया, ये रोना, ये धोना, ये सब का बातें सुनाएगा उसको। जब सुनेगा तो दूसरा व्यक्ति क्या प्रसन्न होगा सुनकर के, उसको लगे कि देखो ये दुख है, दुखी व्यक्ति की दुखी बातें सुन करके जो सुनेगा उसको भी दुख। लेकिन ये सब बातों को विचार संसारी लोग नहीं करते, वो तो अपने रट्टे में बह चले जा रहे हैं, अपने जिस प्रकार जो कुछ हो रहा है जो करते जा रहे हैं, आंख बंद करके भटकते हुए अंधेरे में घूमते ही रहते हैं। ये सब इधर की तरफ, इस मनोविज्ञानों की तरफ, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति व्यक्ति की आंतरिक है, उसका निरूपण केवल धर्मशास्त्र ही करते हैं। ये ऋषि मुनि, ये लोग जो विचारक लोग हैं, जो जीवन के आंतरिक स्वरूप को समझते हैं, वही उनका विचार करते हैं, बताते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जीवन वही है जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से सुख में आनंद में जीवन जिए और दूसरे लोगों को भी उसी प्रकार से सुख दे, आनंद दे। कहीं कहीं ऐसे भी संतों ने कह दिया है कि जहां तक बने तहां तक दूसरों लोगों को सुख दो, अगर सुख नहीं देते हो तो कम से कम दुख न दो। माने ऐसा कार्य न करो जिसके कारण दूसरे लोगों को दुख हो। अगर हमारे वाणी से, व्यवहार से, कार्य से दूसरे लोगों को दुख हुआ तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है। न हम अपने लिए उपयोगी हैं, न कहीं किसी दूसरे के लिए हम उपयोगी हैं। इसलिए जिस शास्त्र का जो महत्व है, जो इसका दृष्टिकोण है, उसको समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। माने उसकी जो यही ठीक है, इस प्रकार से अपने बुद्धि में लाने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति करे कि हाँ इस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था, ऐसे ही हमको करना चाहिए, तब ये भाव, ये विचार उसके मन में आएंगे और धीरे धीरे उसके अंदर भी परिवर्तन होगा, व्यक्ति सावधान रहेगा। कभी कभी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, मैंने दूसरे लोगों को दुख देना, हानि पहुंचाने का कार्य करता है और वो ये समझता यही ठीक है, बिना ऐसे किए काम नहीं चलेगा, तो ये भी व्यक्ति की दुर्बलता का कारण है। उसे वो तरीका नहीं मालूम है कि बिना दुख दिए, बिना कष्ट पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए भी काम चल सकता है और ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। वैसे क्या चल सकता है? अरे भाई, उसको सीखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी युक्ति है, ट्रेनिंग लो, तो आपको पता लगेगा कि बिना किसी को हानि पहुंचाए, दुख दिए हुए भी काम चल सकता है और अच्छा काम चल सकता है। काम चलाने के कारण से दूसरे लोगों को दुख देना, कष्ट पहुंचाना, उनके मन को दुखी करना अच्छा नहीं है। भौतिकवादी जगत में तो यही है कि बिना दूसरे को हानि पहुंचाए हमें लाभ कैसे मिलेगा? जब तक कि हम दूसरे को मान लो किसी व्यक्ति के पास 150 रुपए हैं तो हमारे पास कैसे आए? जब तक हम उसको छीनेंगे नहीं, चार तमाचे नहीं लगाएंगे, उसको गिरा नहीं दे, भगा नहीं देंगे, तब तक वो पैसा हमारे पास कैसे आएगा? ये तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो हम बैठे रहे, हम इसी प्रकार हमारा हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि मान लो आपके पास कोई पैसा नहीं, दूसरा के लेने चाहते हो, तो प्रेम पूर्वक लो, हाथ जोड़ करके लो, उसकी खुशामद करके लो, प्रसन्न होकर के वो दे सकता है, जितना तुम लेना चाहते हो सकता उससे भी ज्यादा दे दे। इसलिए भौतिकवादी दृष्टिकोण दूसरा है, अप्रोच दूसरे प्रकार के, आध्यात्मिक दूसरे प्रकार के। व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें लोग बात करते हैं। भौतिकवादियों लोगों का व्यवसाय का तरीका दूसरा है, जो आध्यात्मिक पुरुष है उनकी व्यवसाय करने का तरीका दूसरा है। आप ये कहो कि भौतिकवादी हैं वही व्यवसाय में सफल होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो अध्यात्मवादी हैं वो भी व्यवसाय में सफल होते हैं और कहीं ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन ये बात सीखनी पड़ती है। प्रलोभन के कारण, अज्ञान के कारण व्यक्ति भौतिकवादी स्वार्थपूर्ण अहंकारपूर्ण तरीका अपना करके जीवन जीता है, वो गलत तरीका है। यहीं से इस पहले ही अध्याय से इस प्रकार की सूचना यहाँ मिलने लगती है कि दुर्योधन का पक्ष किस प्रकार का है और दूसरा पांडवों का पक्ष किस प्रकार का है। दोनों को सावधानी से यहीं से अध्ययन करें, विचार करें, तो ये दिखाई देने लगे कि आंखें खुलने लगे। दुर्योधन राज्य नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता? वो राज्य का सुख भोगना चाहता है, भौतिक सुख की कामना उसको है, और राज्य चला जाएगा तो उसका सुख चला जाएगा। लेकिन ये भी एक तरीका था कि अगर उनको पांडवों के साथ वो मैत्री रखता और जैसे भाई थे तैसे उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रखता और राज्य उन्हीं को दे देता, तो पांडव कुछ ऐसे थोड़ी करते कि दुर्योधन को भूखों मरने देते। दुर्योधन भी उन्हीं के राजभवन में रहता, सब उस कौरव जितने भी हैं सब उन्हीं के राजभवन में रहते, वो भी राज्य का सुख उसी प्रकार से प्राप्त करते जैसे पांडव लोग प्राप्त करते, लेकिन वो दृष्टिकोण ना अपना करके उसको तो ये लगा कि राज्य छीन लेने में ही हमको सुख है, उसी में शांति है, और अंत में हो गया उसका विनाश, राज्य भी चला गया और वो भी मारा गया। अब इसके बाद अगला श्लोक आप देखोगे अर्थ से शुरू होता है, अर्थ अर्थ के माने यहां से टॉपिक बदलता है। संस्कृत में नियम है ये, जब अर्थ बोलें तो समझो कि अब दूसरी बात शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए अब दूसरी बात को कल देख। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।